राम हरे हरे,
हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। सूर्य दर्शन, सूर्य सूर्य कॉम्प्लेक्स, तीन मिला के कॉम्प्लेक्स, इसके दरवाजे के ऊपर दर्शन लिखा है। उधर दर्शन है, इधर कॉम्प्लेक्स है, और आगे सूर्य पैलेस है। सूर्य ही सूर्य है, प्रकाश ही प्रकाश है। तो सूर्य कॉम्प्लेक्स के इस सत्संग हाल में आप सबका स्वागत है। तीन एक दिन पहले सत्संग हो रहा था मिलानो हाइट्स में, वहां सूर्य कॉम्प्लेक्स से धारेश भाई पधारे थे और उनको पता लगा कि ये साधु रहते हमारे कॉम्प्लेक्स में सत्संग कहीं और करते हैं, ये तो अन्याय है। इसको बुद्धिमान आदमी कहते हैं ना, कि रहे यहां खाए यहां और सत्संग कहीं और जाके करे, ये ठीक तो नहीं है। उन्होंने फिर हमको ये सेवा का अवसर दिया और हमारा भी धर्म बनता है कि जहां रहना चाहिए वहां सेवा करनी चाहिए। वैसे सूर्य का काम प्रकाश देना है और हम तो प्रकाश के पास ही रहते हैं, बाकी को पता नहीं प्रकाश मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन हम तो प्रकाश के पास ही रहते हैं। जैसे सूर्य के पास जाएंगे तो प्रकाश के पास जाना चाहिए, अंधेरे में रहना ठीक नहीं है। तो कृष्ण भावना अमृत संघ, कृष्ण भावना अमृत संघ एक अंतर्राष्ट्रीय एक वैदिक सनातन धर्म को जन जन तक पहुंचाने का विराट और विशाल आंदोलन है। और उसका आधारभूत है भगवत गीता। भगवत गीता के आधारभूत पर जन जन तक वैदिक सनातन धर्म का संदेश पहुंचाना इस आपकी जो संस्था है इसका उद्देश्य है। तब लोग हमसे पूछते हैं भगवत गीता 5000 साल भगवान श्री कृष्ण ने पहले बताई तो उसकी आजकल क्या उपयोगिता है, हमारे किस काम आएगी। अच्छा प्रश्न है पूछने का, तो भगवत गीता में ऐसी कौन सी बात है जो अभी हमारे काम आ सकती है, तो बहुत पुरानी है। ऐसा प्रश्न एक बार श्री प्रभुपाद से पूछा था तो उनका उत्तर एक श्लोक प्रभुपाद जी ने भगवत गीता से पढ़ा, हम उस श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे कि उसकी आवश्यकता आज है कि नहीं। और वो श्लोक पढ़ा तीसरे अध्याय से भगवत गीता के, और तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग। और उस तीसरे अध्याय का श्लोक पढ़ा, अनाद भवती भूतानि प्रजन्याद अनसंभवः जितने प्राणी इस दुनिया में इस संसार में रहते हैं उन सबके जीवन का आधार अन्न है और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। ये आज उपयोगी है कि नहीं भगवद गीता का सिद्धांत, आज लोग अन्न नहीं खाते हैं क्या? हाँ जी, जरूरी है कि नहीं है? आज अन्न खाते हैं कि नहीं खाते हैं आजकल के लोग? सब लोगों को अन्न के ऊपर जीना पड़ता है ना, क्या और कोई साधन है? और अन्न पैदा करने के लिए बरसात चाहिए या और कोई साधन है? बरसात के अलावा अन्न हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इतनी सारी विज्ञान ने प्रगति की है विश्व के अंदर, लेकिन एक दाना चावल का किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकता। क्यों भाई, बोलो, बन सकता है? ऐसा कोई विज्ञान ने योजना बनाई है कि एक दाना कहीं चावल का बन सके? नहीं बनेगा। दाल, दाल, चावल, गेहूं, जो चीजें आपको खाने के लिए आवश्यकता है, उनमें से एक चीज भी किसी विज्ञानी ने आज तक नहीं बना पाया। बरसात होगी तब बनेगी, अन्न पके, पृथ्वी से उत्पत्ति होगी। तो ये क्या भगवत गीता की शिक्षा आज उपयोगी है कि नहीं? बस सिर्फ अंतर इतना हो गया है कि पहले 5 रुपये के 100 किलो मिलते थे, अब 500 रुपये का किलो मिलता है। बस इतनी बदमाशी हमारी। जो चीज बहुत सरलता से सस्ती मिल जाती थी, वो महंगी मिल रही है, इतना ही अंतर आया है। और क्या अंतर आया? और क्यों ये अंतर आया है? बरसात कैसे होती है? भगवान आगे, भगवान कहते हैं बरसात कैसे होती है? पर्जन्याद कर्म सम यज्ञ सम उद्भव। बरसात होती है जब यज्ञ किया जाता है। जब यज्ञ होगा तब बरसात होगी। यज्ञ कर्म समुद्भव, और यज्ञ कर्म के द्वारा किया जाएगा। अब दो चीजें, अन्न खाने के बगैर कोई दुनिया में जी सकता है क्या? नहीं जी सकता है ना। और बरसात के बगैर अन्न पैदा नहीं हो सकता है। बहुत हमने प्रयास किया मैन्यूअल डाल के, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन चीज सस्ती तो नहीं हो रही। क्यों? बरसात समय पे नहीं पड़ेगी या पड़ेगी, ये हमारे बस में है क्या? ये भी नवे अध्याय भगवद गीता में लिखा है, पर्जन्याद वर्षामी निग्रहामी च। भगवान कहते हैं वर्षा करनी है, करो या न करो ये मेरी मर्जी। तो आप कब बरसात करोगे भगवान? तब कहते जब आप यज्ञ करोगे तब मैं बरसात करूंगा। नियम बना रखा है। अब गीता उपयोगी आज तब है जब हम यज्ञ करें। अब यज्ञ नहीं करेंगे और यज्ञ करने से हमें मिलेगा क्या? ये भी भगवान ने भगवद गीता में बहुत स्पष्ट लिखा है, यज्ञ से बड़े परेशान मत हो। आज यज्ञ की बात करते हैं तो फ्लैटों में रहने वाले बेचारे बहुत दुखी हो जाते हैं। यज्ञ करेंगे तो आग जलानी पड़ेगी, हाँ घी लाना पड़ेगा, फिर धुआं कहाँ जाएगा? यज्ञ तो हो नहीं सकता है, फिर कैसे करेंगे? ये परेशानी है ना। यज्ञ करना बहुत मुश्किल हो गया हमको। कभी आधुनिक संस्कृति के ऊपर आघात करना होता है तब कहते हैं पहले हर घर में यज्ञशाला होती थी, अब केवल हर घर में शौचालय है। यज्ञशाला को निकाल दिया, शौचालय घर में लाए। जब शौचालय बाहर था तब 4 किलोमीटर सुबह चल के जाते थे। ये पागल जो मॉर्निंग वॉक के लिए भागते हैं, ये भागने की जरूरत नहीं थी। सुबह सवेरे सब 4 किलोमीटर खुद ही चल के आते थे। किसी को पूछने की, ये कहने की जरूरत नहीं थी कि तुम्हें मॉर्निंग वॉक करनी, अपने आप होती थी। और तब प्रेशर बनाने के लिए चाय पीने की भी जरूरत नहीं थी। ये पागल खाने की जो बातें ये थी नहीं। जब से यज्ञशाला घर से निकाली और शौचालय घर में आया है, तब से ये बीमारी सब साथ में लाया है। अब हम उसके बगैर रह नहीं सकते हैं। ये हमारी बदकिस्मती समझो या ये हमारे दुर्भाग्य समझो, लेकिन उसके बगैर रह नहीं सकते। अभी भी गांव में कभी प्रभुपाद जी अब न्यू वृंदावन में पहुंचे, भक्तों ने बड़ा प्रयास किया बाथरूम सेट करने का, सारी रात मेहनत की, सुबह प्रभुपाद लोटो लेके जंगल में चले गए। बोला हम गांव के लोग हैं, हमको तो ये है फ्रेश एयर में जाके बैठे, आप फ्रेशनर लगा के उसको भी खराब कर रहे हैं। प्रेजनर भी खराब हो रहा है। प्राकृतिक तो प्रकृति से बहुत दूर गए हम, प्रकृति से बहुत दूर चले गए। तो अन्न की उत्पत्ति होगी बरसात से और बरसात होगी यज्ञ से, और फिर भगवान ने आदेश दिया सीधा। क्या आदेश दे दिया? ये यज्ञ कैसा है? इष्ट काम धुक, ये यज्ञ तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा प्रजापति ही, ये भगवत गीता का श्लोक है। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा प्रजापति ही, भगवान कहते हैं जब इस सृष्टि की उत्पत्ति की, देवताओं को पैदा किया और मानव को पैदा किया, तो उसके साथ यज्ञ की भी उत्पत्ति की। सह का मतलब साथ में, सह यज्ञ सृष्ट प्रोवाच प्रजापति। फिर उपदेश दिया, क्या उपदेश दिया? प्रोवाच प्रजापति अनेन प्रसंश धर्म इष्टवा अष्ट काम दुख, इस यज्ञ को करो, ये यज्ञ आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। इच्छाएं क्या है? पेट में रोटी खाने की, दो टाइम की मिलेगी, बरसात होगी, अन्न होगा, तो सब कुछ आपका। सबसे बड़ा पहले जमाने में बुद्धिमानी किसको मानी जाती थी? अन्न। जिसके घर में 12 महीने का अन्न है वो बुद्धिमान है। आप लोग सब, भगवान आपकी उम्र बड़ी करे और धन आपका बढ़े, आप और सुखी हो। अपने आप सब जो इतने बैठे हैं ना, किसी के घर में 3 महीने का राशन नहीं है। मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? हाँ जी, अब थोड़ा नीचे आता हूं, महीने का राशन भी पूरा नहीं होगा। और 15-20 लोग अगर मेहमान घर में आ जाए तो पिछले दरवाजे से, दरवाजा भी पिछला नहीं है, फ्लैट में नीचे से कोई सामान मंगाओ। हो सकता है पैसा आपकी बैंक बैलेंस, बिजनेस आपका अरबों का हो, लेकिन घर में 10 दिन के खाने का भी भोजन नहीं है। जाओ किसी गांव में, गरीब से गरीब जिसके पास 1 एकड़ जमीन है, उसके घर में 12 महीने का गेहूं मिलेगा, 12 महीने का सारा राशन मिलेगा। अब सुखी कौन है, आप है कि वो है? हमने अपने जीवन का अनुभव किया है। कराची में कर्फ्यू लगा 15 दिन, हम रह रहे थे करोड़पति के घर में, लेकिन आटा खत्म हो गया, क्या खाएं? अब तो चेकबुक पड़े थे, नोट पड़े थे, लेकिन आटा नहीं, अब क्या खाएं? अब ऐसी स्थिति तो हो ही सकती है। और ये कर्फ्यू नहीं लगे, केवल तेल आना बंद हो जाए और गाड़ी यहां नहीं पहुंचे सामान की, तो खाएंगे कहां से? हम डिपेंडेंट कितने हो गए हैं। दरवाजे से बाहर निकल के फूल गोभी का फूल तोड़ के आके और धो के सब्जी बना के खाओ, वो ठीक है कि 15 दिन पहले नासिक में गोभी पकी है और 5-25 आदमी ने, किसी ने फेंका, किसी ने उठाया, किसी ने लात मारी बोरी के ऊपर, फिर घूमती घूमती यहां आई, कोल्ड स्टोर में पड़ी हुई, वो आपके घर में आए, धोए खाओ, वो अच्छी है? कौन सी अच्छी है? घर के सामने वाली बनी हुई गोभी की कीमत 2 रुपया किलो है, नासिक से आने वाली गोभी की कीमत 22 रुपया किलो है। वो सिर्फ ओवरहेड लग गया, लग गया कि नहीं लग गया? तो डिपेंडेंट हम कितने हैं। जब यहां स्ट्राइक होती है ट्रक वालों की, तब क्या हाल होता है? कितने हम, हमारे पास, हम समझते हैं कि हम सुखी हैं, लेकिन हमारे पास 10 दिन के खाने का राशन नहीं है। खान कौन से बुद्धिमान सुखी हैं? हम कहां से सुखी हैं? हम कभी इसके ऊपर कभी विचार ध्यान नहीं किया। लेने की क्षमता है लेकिन लेते नहीं। पहले ये चीजें घर में पहले रखी जाती थी, लेकिन उसी को कहते थे अन्न धन के भंडार भरे रहे, पहले आशीर्वाद हम ये जिया करते थे, आपके घर में पुत्र दूध दही अन्न के भंडार हो। अब लोग कहते महाराज जगह ही नहीं, अन्न कहां भंडार? ये बड़ी समस्या हो गई। नहीं,
ये आशीर्वाद क्यों देते हैं? क्योंकि ये आपको जीने के लिए चाहिए, मुझे वही चीज देनी चाहिए जिसकी आपको आवश्यकता है ना। तो भगवत गीता आज भी उतनी उपयोग, भगवान ने कहा आप यज्ञ करो तो ये आपकी सब इच्छाएं पूरी करेगा। और फिर यज्ञ के बहुत सरल यज्ञ बता दिया भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में। इसलिए कृष्ण क्रांतिकार है, रिवोल्यूशनरी है कृष्ण। भगवत गीता रिवोल्यूशनरी शास्त्र है। यज्ञ को यज्ञशाला से निकालकर आपके दुकान तक लाके खड़ा कर दिया कृष्ण ने। यत करोसी यद स्नासी यद जहोसी ददासी यत यद तपस्यसी कौन से तद कुरुषो मदार्पण यज्ञ होगी। जहां आप हो वहां कर सकते हो यज्ञ, यज्ञशाला में यज्ञ करने की जरूरत नहीं। और फिर आगे बढ़ते और भी उदारता भगवान ने दिखा दी कि आने वाले लोग बहुत बेचारे धन होते हुए भी गरीब होंगे, घर में न घी होगा न आग होगी, इसलिए यज्ञ कर नहीं पाएंगे, इसलिए और कोई साधन इनको बताना चाहिए। यज्ञानाम जप यज्ञअस्मी, भगवान ने बहुत सुंदर साधन बता दिए कि सारे यज्ञों में मेरी जो विभूति है वो जप नाम का यज्ञ है। ये मेरी विभूति है जप नाम का यज्ञ, और इसके करने के लिए आपके फ्लैट में न धुआं होगा, न ब्राह्मण को बुलाने की परेशानी है, न घी के ऊपर खर्च करने की जरूरत है, आपकी अपनी जबान है, केवल इसको हिलाने की जरूरत है। ये यज्ञ सब कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो करना चाहिए ना, क्यों नहीं करते? ये ऐसा यज्ञ है जो सब कर सकते हैं, और भगवान कहते हैं ये आपकी सब इच्छाएं पूरी करेगा, और इस यज्ञ के द्वारा आपकी जो आवश्यकता है संसार में वो सब पूरी होंगी, और उन आवश्यकताओं से भी ज्यादा। आपके जीवन का जो लक्ष्य है, जैसे पुष्पांग हमारे गोस्वामी कह रहे थे कि आपके मानवता का जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, वो भी इस जप से प्राप्त हो जाएगी। तो इतना सरल यज्ञ भगवत गीता के माध्यम से भगवान ने सबके कल्याण के लिए दे दिया। जो आप कहीं भी हो, घर में हो या दुकान पे हो, जहाज में हो या ट्रेन में हो, बस में हो या रिक्शे पे हो, जब कर सकते हो तो ये जब क्यों नहीं करना चाहिए? अब ये प्रश्न ये क्यों नहीं करना चाहिए? अगर नहीं करते हैं हम तो हम अपना ही आहित कर रहे हैं, भगवान को कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो हमको अपना हित और अहित तो कम से कम सोचना चाहिए ना। बुद्धिमान व्यक्ति अपना हित तो सब लोग जानते हैं ना, तो शास्त्र असल में हमारा अपना हित क्या है ये सिखाता है कि हर एक व्यक्ति को नित्य यज्ञ करना चाहिए। पुराने जमाने में सब घरों में मैंने कहा ना यज्ञशाला होती थी और यज्ञ होता था। यज्ञ बंद हुआ, बीच में आर्या समाज ने यज्ञ जगह जगह पे शुरू कराया। यज्ञ बंद हुआ वेदों वाला, तो एक समय में उन्होंने यज्ञ शुरू कराया, लेकिन वो यज्ञ चल नहीं पाया क्योंकि आपके फ्लैटों में यज्ञ नहीं हो सकता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के ये यज्ञ का सिद्धांत सबके लिए सब जगह बहुत सरलता से किया जा सकता है, तो इसको करना चाहिए अगर आप सुखी रहना चाहते हो। सुखी रहने का ये सबसे सरल और सबसे उत्तम साधन है। इस यज्ञ का फल भगवान की प्राप्ति है, और भगवान की प्राप्ति में सब कुछ बाकी प्राप्ति अपने आप हो जाती है। तो इस यज्ञ को सबको निश्चित रूप से करने का नियम बनाना चाहिए घर में। अकेले जब बैठे तब यज्ञ जप यज्ञ करना चाहिए। जप यज्ञ के लिए आपको सब कुल मिला के खर्चा करना पड़ेगा 25 रुपया। 25 रुपये के खर्चे से आपका ये यज्ञ होगा, एक माला, एक इसके अंदर रखने की झोली, बाकी आपकी ये उंगली थोड़ी घिसेगी बस, और कोई खर्चा नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस ये यज्ञ हो गया।
कोई परेशानी है इस यज्ञ में? आप सब लोग कर सकते हैं, बच्चा भी कर सकता है, तो इस यज्ञ को करना चाहिए। ये यज्ञ करने का मतलब है आप गीता के सार को समझ गए। नहीं पढ़ने में गीता आती है, समझ में आती है तो कोई बात नहीं, केवल एक ये यज्ञ करो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अपने आप। केवल एक ये यज्ञ करो, बस नाम जपना शुरू करो, फिर समय के ऊपर बरसात भी आएगी, अन्न की उत्पत्ति भी होती रहेगी। एक बार बहुत सारे भक्त हैदराबाद दक्षिण में गए, उस साल में आंध्र प्रदेश में अकाल था, बरसात पड़ी नहीं, बहुत लोग परेशान थे। भक्त कोई 200-300 भक्त वहां गए मंदिर की स्थापना के लिए, कीर्तन किया, संकीर्तन किया, और बहुत बड़ी क्या 75 है 69 मंदिर का उद्घाटन 75 में हुआ है, 75 में, उससे पहले भी एक बार हरिनाम संकीर्तन किया, पूरा आंध्र प्रदेश में बरसात हो गई। ये तो अभी हम इधर की बात कर रहे हैं, अपने गांव में राजस्थान में हम जहां रहते थे बरसात तो पड़ती, कभी पड़ती थी कभी नहीं पड़ती थी। जब नहीं पड़ती थी 24 घंटे हरिनाम कीर्तन करते थे, ये हरे कृष्ण मंत्र 24 घंटा, चार चार आदमी की ड्यूटी लगाते थे, चाहे दो दो घंटे की, और तीन दिन चार दिन जब तक बरसात नहीं आए तब तक चलता रहता था। और फिर इतनी बरसात आती थी फिर दोबारा यज्ञ करते थे, भगवान बंद करो। ये तो हम अपने हाथों से देखा। और एक बार कोई पंडित जी था, बोले नहीं हम अपना वाला यज्ञ करें, स्वा वाला। जिस दिन यज्ञ की आहुति उस दिन तूफान आया, मैंने महाराज आपने बरसात मांगी थी कि तूफान मांगा जा, आपका शब्द गलत उच्चारण हो गया होगा, तो तूफान आ गया उस दिन, बरसात आई नहीं, दो बूंदे बरसात गिरी, बाकी तूफान ही तूफान था। तो उस यज्ञ का परिणाम बदल सकता है, लेकिन इस यज्ञ का परिणाम बदल नहीं सकता है। ये बहुत सरल यज्ञ सब कर सकते हैं और हरेक को करना चाहिए। इसलिए भी करना चाहिए कि एक यज्ञ करने का विधान हमारे वेदों में पहले जमाने से लिखा हुआ है, क्योंकि हमसे अपराध पाप रोज होते हैं, जाने अनजाने में पाप रोज होते हैं। हर घर में हर रोज कई जीवों की हत्या होती है, झाड़ू निकालते समय, पानी भरते समय, आग जलाते समय, अन्न को साफ करते समय बहुत जीवों की हत्या होती है। पांच कार्यों में जीवों की हत्या होती है, इसलिए पांच यज्ञ करने में का पहले वो सब समाप्त हो गया, इसलिए ये हरि नाम यज्ञ जप यज्ञ सबको करना चाहिए अगर सुखी रहना चाहते हैं तो। इष्ट काम दुख सबकी इच्छाओं की पूर्ति का सरल मार्ग है, दुखी रास्ते पे जाने की जरूरत नहीं है, सुखी रास्ते को अपना लीजिए और सुखी हो जाइए। ये तो हुआ यज्ञ, भगवद गीता का श्लोक जो सबके लिए सब समय के लिए सरलता से जीवन में उतारा जा सकता है। ये एक अन्न की बात हो गई, हमारी आवश्यकता है अन्न, और उसके उत्पत्ति का रास्ता भगवान ने बता दिया। वैसे जैसे अभी समय और आगे आएगा, कलयुग का वो और कठिन समय आने वाला है, और हम रोज देख रहे हैं कि हर चीज हमारे, आप अपने जीवन में आज से 10 साल पहले और अभी को देख लो, 10 साल पहले और अभी में कितना अंतर है। आपके केवल फ्लैटों के रेट में कितना अंतर है बताओ, हाँ? लेने वाला पागल होता है, बेचने वाला खुश होता है। मैं तो 50 में लिया था, आज 1 करोड़ में जा रहा है, लेकिन लेने वाला बोलता है मेरे पास 50 थे तब तो मैंने लिया नहीं, अब करोड़ है नहीं। लेकिन ये 50 से 1 करोड़ में हो कैसे गए, क्या हो गया, धरती कम हो गई, क्यों हो क्या गया, इतना रेट क्यों बढ़ गया, कारण क्या है इसका, क्या कारण है इसका बताइए, तो कोई कारण आप बताइए क्यों रेट बढ़ गए। हाँ जी, रुपये की वैल्यू कम हो गई, दस साल में रुपये की वैल्यू में इतना कमी आई नहीं है। अब कंपेयर करेंगे तो मार्केट की करेंसी से सोने की कंपेरिजन में वैल्यू में कमी आई है। क्यों मां कोई और बताओ, कोई जरा राय बताओ कि आप बताओ कुछ तो आप भी सहयोग कीजिए। आदमी लोभी हो गए हैं, इसका एक ही अर्थ है, ज्यादा पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। उतने की चीज है, चीज में कोई फर्क नहीं आया है। अगर कंपेरेटिव रेटों में कोई फर्क नहीं आया, आदमी का लोभ बढ़ा है और कुछ भी नहीं है। मैं आपको सच बताता हूं, हमारे गांव की जमीन जो 300 रुपया बीघा बिकती थी, फिर एक समय ऐसा आया दिल्ली वालों ने जमीन बेच दी, दिल्ली में आ गई तो उन्होंने आके वहां लेना शुरू की, एक लाख रुपया बीघा हो गया। फिर दिल्ली में तो जमीन खरीदना बंद होगी, अब उसको 300 रुपये वाले को 1 लाख मिल रहा था। अब कोई कहता है तुम 60,000 में दो, बोला 40,000 का घाटा खा के क्यों दूंगा। अरे 300 की तुम्हारे को 60,000 मिलने होते हो, समझ में नहीं आ रहा। ये सिर्फ दिमाग की कैलकुलेशन है, केवल मेंटल कैलकुलेशन है ये और कुछ भी नहीं, केवल मेंटल कैलकुलेशन। दिमाग के अंदर हिसाब लगा रहे इतना था इतना कम हो गया, वैसे कुछ कम नहीं हुआ। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है? क्योंकि लोग धर्म से दूर गए हैं और दूसरे आदमी को दुखी करने में सुखी हो रहे हैं, दूसरे को सुखी नहीं देखना चाहते। ये समस्या है, लोगों के हृदय से दया चली गई, एक दूसरे की सहायता करने वाला भाव चला गया। क्यों? क्योंकि धर्म के ऊपर, धर्म शास्त्रों की शिक्षाओं से बहुत दूर चले गए, किसी चीज का कुछ नहीं बढ़ा है, केवल दिमाग के अंदर कैलकुलेशन बिगड़ी है और कुछ भी नहीं हुआ है। धरती अभी वैसे ही अन्न दे रही है, बरसात में ऐसे ही पानी ऊपर से गिर रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं आया। गाय अभी वैसा ही सफेद दूध दे रही है, उसके दूध में पीला भी नहीं हुआ है, काला भी नहीं हुआ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो हमारे दिमागों में ये परिवर्तन कहां से आ गया? फॉल्स इकोनॉमी, झूठी, क्या कहेंगे इकोनॉमी को, झूठा अर्थव्यवस्था। आध्यात्मिकता का अर्थ ये नहीं है कि आपको संसार से अलग किया जाएगा, आध्यात्मिकता का अर्थ है आपको संसार में कैसे रहना चाहिए वो सिखाया जाएगा। एक गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि आध्यात्मिक का मतलब है कि संसार से को हमको छोड़ना है, संसार में सुख कैसे आपको जीना है, ये आध्यात्मिकता का उद्देश्य है। भगवत गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण ने ये तो नहीं कहा कि तुम घर बर्बाद अपना काम छोड़ दो और जाके मंदिर में बैठ के घंटी बजाओ, ऐसे बोला क्या अर्जुन को कृष्ण ने? क्या बोला? तुम अपने धर्म को निभाओ, अपने कर्तव्य कर्म को ठीक तरह से करो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम भगवान के भक्तों के संग में भगवान की भक्ति करना शुरू करेंगे तो हम अपने कम काम को और अच्छी तरह से ठीक तरह से कर सकेंगे। जो अभी हम त्रुटियां करेंगे वो नहीं करेंगे, दयालुता के भाव से करेंगे। अभी क्रूरता से हो रहा है सब कुछ, क्रूरता और दयालुता में अंदर है। एक बड़ी अच्छी बात थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, कुटिया और कोठी में क्या अंतर होता है। कुटिया में साधु रहता है, उसके ऊपर लिखा होता है स्वागत है। कोठी में सेठ रहता है, जिसमें लिखा होता है सावधान, कुत्तू सावधान कुत्तू से। बस इतना दोनों में अंतर है, ये दोनों में सिर्फ अंतर है। कोठी बहुत बड़ी है लेकिन किसी के लिए स्वागत का उसमें स्वागत लिखा ही नहीं है। सावधान, भाई सावधान क्यों कहें? अंदर कोई ऐसी क्या कोई चीज है जो सावधान हो जाए? तो ये दोनों में अंतर है। अभी भी वो संस्कृति है और ये हम जिस संस्कृति में रह रहे हैं, इन दोनों में क्या अंतर है, इसको ठीक तरह समझना चाहिए। हरे कृष्णा, कहां से आर्मी आ गई सारी? ये बच्चे लोग कहां गए? वो गाना था भजन, कहां गए ये गाने वाले? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। एक भविष्यवाणी है आने वाले समय में क्या होने वाला है। हो सकता है हम उसको न देख पाए, लेकिन इन बच्चों को देखना होगा। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाएगी भविष्य में। ऐसे लगता है आपको कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी? हाँ, कितने पढ़े लिखे लोग हैं आज जिनको नौकरी नहीं मिल रही है? हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों ने हमको सेवा का अवसर दिया और हमारा सिर्फ ये उद्देश्य है कि ये जो हमारे सत्शास्त्र है, जो हमारा असली धन था, हमने कहा था वहां कि जो आएगा वो बनेगा अरबपति। ये हमारे सत्संग का आज का विषय था, जो आएगा वो बनेगा अरबपति। उसमें तो कौन बनेगा करोड़पति, इसमें जो आएगा वो बनेगा अरबपति, ये हमारा विषय था। एक बहुत सुंदर श्लोक है शास्त्र का, गौकोटि दानम ग्रहणे च काशी। काशी में ग्रहण के दिन 1 करोड़ गाय का दान दे दो। एक तो गौ दान हुआ और फिर काशी में हुआ, फिर ग्रहण के दिन हुआ, कितना बड़ा फल है। गौकोटि दानम ग्रहणे च काशी प्रयाग गंगायुत कल्पवास। प्रयाग में गंगा जमुना सरस्वती के संगम पे कल्प ब्रह्मा जी के 1 दिन तक बैठ के वहां तपस्या करो। गौकोटि दानम ग्रहणे च काशी प्रयाग गंगायुत कल्पवास। कल्पवास का मतलब आजकल कहते हैं केवल 1 जनवरी का महीना वहां बैठ जाओ, मकर संक्रांति तक, तो कल्पवास के बराबर है। कुंभ मेले का 1 महीना कल्पवास कहलाता है, तो उसका बहुत बड़ा फल है। यज्ञश्च मेरु स्वर्णम दानम, यज्ञ करके और मेरु पर्वत सोने का पूरा दान करो, कितना बड़ा काम है। ये सब आप सुन सकते हैं, कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना? काशी जा नहीं सकते, करोड़ गाय कहां से लाओगे? सूरत पूरे के सूरत के अंदर में तो 1 भी गाय नहीं होगी, फ्लैट में कहां से गाय आएगी? लेकिन फ्लैटों में कुत्ते होंगे। फ्लैटों में कुत्ते हैं क्या? फ्लैटों में कुत्ते होते हैं, गाय नहीं होती ना। हरे कृष्ण, जिसके साथ रहोगा वैसा स्वभाव बनेगा। गाय के साथ रहोगा तो धीर सहनशील स्वभाव बनेगा और दूसरों को दूध देकर सुखी करोगे। कुत्ता के साथ रहने वाले को केवल भौंकना आएगा और काटना आएगा। यही कुछ हो रहा है चारों ओर, भौंकना और काटना हो रहा है, और तो कुछ नहीं हो रहा।
पर जिसके साथ रहोगे वैसे ही रहोगे ना, और क्या होगा? जो जैसा संग होगा ऐसा रंग लगे, इसमें तो कोई अंतर है नहीं। कुत्ते की पूछ भी सदा टेढ़ी लगी, कभी सीधी नहीं हो सकती। और गाय की पूछ से तो भगवान श्री कृष्ण का जब पूतना का उद्धार किया था तो मंत्र उच्चारण से गाय के पूछ से कृष्ण की रक्षा के मंत्र पढ़े थे। पहले गाय से कृष्ण की रक्षा की, फिर गाय ने कृष्ण की रक्षा की। गोपाल की पहले गाय ने रक्षा की, फिर गोपाल ने रक्षा की। तो कहा बात कह रहे थे करोड़ देश, सिर्फ सुनो, करोड़ गाय भी नहीं होंगी और दे भी नहीं सकते और काशी जा भी नहीं सकते। प्रयाग में एक महीना कुंभ मेले में कुछ लोग अभी भी आके रहते हैं, हमने देखे 2001 में प्रयाग के अंदर शहर के रहने वाले एक पूरे महीने के लिए टेंट लगा के वहां रहे थे, हमारे पास रहते हैं। लेकिन सोने का दान मेरू पर्वत तो क्या है, अब तो सोने का दान देने वाली तो बात सोचना ठीक नहीं है, दान की बात सोचना ही ठीक नहीं है। हाँ जी, मन से दान दे दें, हमने सोने का दान कर दिया, ऐसा भी करो तो बहुत बड़ा अच्छा है। कलयुग में मन से किए हुए दान का भी फल मिलता है, और पाप जब तक हाथ से नहीं करोगे तब तक नुकसान नहीं होगा। कितना भी बुरा सोचो जब तक करोगे नहीं तब तक दंड नहीं मिलेगा कलयुग में। लेकिन कुछ नहीं है, बोलो कि आज मैंने 100 गाय दान कर दी तो भगवान में चंद्रगुप्त लिखेगा, चित्रगुप्त 100 गाय इसने आज दान कर दी, आपको फल मिलेगा। लेकिन कलयुग के लोग मन से भी दान नहीं करेंगे, सोच के भी दान नहीं करेंगे। हमने कई बार कहा लेकिन किसी ने आज तक नहीं किया, करते तो हमको ऊपर से रिपोर्ट आ जाती है किसी ने किया है, किसी ने मन से भी नहीं किया। अरे बोल से महाराज आया है, हमने मन से इसको एक किलो सोना दान कर दिया, दे दिया। तो कहने में कोई आपको नुकसान तो नहीं हो रहा है ना? नहीं कहो, नहीं कहने से भी बुखार आएगा, देना तो दूर की बात है यार। गोविंद नाम नाम स्मरणे न तुल्य, ये तीनों बहुत बड़े धार्मिक कार्य गोविंद के नाम उच्चारण के बराबर नहीं है। गोविंद का नाम इन सबसे भारी है। करोड़ गाय को छोड़ो, केवल गोविंद का नाम उच्चारण करो तो आप इन सब दानों से ज्यादा फल के अधिकारी होंगे। इन सब दानों से अधिक, इन सब दानों का फल क्या है? स्वर्ग की प्राप्ति, बस ना। ये सब दान आपको स्वर्ग तक पहुंचाएंगे ना। लेकिन गोविंद नाम, गोविंद का एक शब्द लिखा है कि हे भक्ति देवी, जिसके हृदय में आप बैठ जाती हो, आप गोविंद को लाके उसके हृदय में बिठा सकती हो, आप में ये शक्ति है। तो गोविंद का नाम उच्चारण से भगवान बैठ के आपके हृदय में और आपके सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। नमे भक्त प्रणश्यन्ति, कौन थे नमे भक्त प्रणश्यन्ति। एक बार जो मेरा भक्त बन जाता है उसका कभी मैं नाश होने नहीं दूंगा। एक गोविंद नाम उच्चारण करने से आप इन सब दानों से ऊपर अपने जीवन में अति उत्तम लक्ष्य भगवान साक्षात की प्राप्ति कर सकते हैं। तो गोविंद नाम उच्चारण करना, ये अगर धनी बनना है संसार में, असली धन चाहिए। ये धन काचो, जो धन आपका है ना, ये कच्चा धन है, ये पक्का धन नहीं, ये कच्चा है, ये धन काचा। वो धन पक्का जो राम नाम का धन है, ये पक्का धन है। पक्के धन का मतलब क्या है? कच्चे और पक्के में अंतर क्या है? कच्चा भोजन होता है दाल चावल, दूसरे दिन नहीं खा सकते। पक्का भोजन होता है कचौरी और लड्डू, 7 दिन खा सकते हो। कच्चे और पक्के का अर्थ ऐसे समझ लीजिए। तो पक्का धन का मतलब ये धन इस दुनिया में नहीं, गोलोक तक ये धन आपके साथ जाएगा, क्योंकि ये धन है ही गोलोक का। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये जो भगवान का नाम गोविंद का है ये गोलोक का धन है। एक जगह प्रभुपाद जी ने लिखा है कि शब्द इस दुनिया के शब्द भी हैं,
एक शब्द गोलोक से नीचे उतर के आते हैं। इस दुनिया के शब्दों से आप दुनिया के अंदर बंध जाओगे, लेकिन गोलोक धाम के शब्दों का अगर उच्चारण करोगे तो इस बंधन से मुक्त हो जाओगे। है दोनों शब्द। तो ये जो गोविंद नाम वाला धन है, ये आपको उस स्थान के ऊपर पहुंचाएगा जिस स्थान के ऊपर ये संसार का धन आपको नहीं पहुंचा सकता। और वो स्थान क्या है? यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहां ये धन आपको पहुंचाएगा, आपका ये धन यहां से आपको एरोप्लेन में चढ़ा के अमेरिका पहुंचा सकता है, इससे ज्यादा भी भविष्य में कभी ऊपर किसी ग्रह के ऊपर ले जा सकता है। लेकिन वैकुंठ से विमान आए और गुरु महाराज की तरह नंद और सुनंद उठा के आपको वैकुंठ ले जाए, ये धन उसका काम नहीं कर सकता। तो ये जो हरि नाम का धन है जो आप जप रहे हैं, भगवान का नाम जो आप जप रहे हैं, ये धन आपका असली धन है। ये नष्ट होने वाला धन नहीं है, चोरी होने वाला धन नहीं है, जलने वाला धन नहीं है, बिगड़ने वाला धन नहीं है। इस धन को जो इकट्ठा करता है वो असली धनी है, वो असली धनी है, ये असली धन है। और सबको नेम से गिनकर रोज ये धन इकट्ठा करना चाहिए और बैंक में जमा करना चाहिए। किसने मेरे को मैसेज लिखा था नए साल का कि हमने राम नाम बैंक में अकाउंट खोल दिया है आपके लिए, आप जितना चाहे उतना ड्राय करो और सारी उम्र सुखी रहो। भगवान के नाम की बैंक है ये, रोज जपो भगवान का नाम, ये धन है। और इसको जपो कैसे? जैसे नोट गिनते हो, सावधानी से एक रह न जाए। तीन बार गिनते हो, कितनी बार गिनते हो? गट्टी बड़ी होती है, कितने ध्यान से गिनते हो? उतने ध्यान से इसको जपो। एक दाने के ऊपर 16 नाम और एक एक नाम साक्षात भगवान, और ये इकट्ठा होता जाएगा तो रोज का हो जाएगा 16 × 16 × 100 × 16 कितना हुआ? 25,000 हो गया, 25,600। ये भी कैलकुलेटर से आपने किया। कितना महीने का हो गया? × 30 7.5 लाख महीने में। और आप जियोगे अभी यहां से जहां बैठे हैं, जो समझो जो 30 में बैठे हैं, इसके ऊपर 50 और हम ऐड करते हैं, 50 इसमें 50 से और मल्टीप्लाई करो 7 लाख को, 7.5 लाख को 50 करोड़। जब आप 50 करोड़ आप जपोगे 50 करोड़ का आपको मिलेगा बोनस भगवान की तरफ से। ये आपका अर्ब हो गया पूरा। असल में भगवान देखिए इतनी तीव्रता से ये जप रहा है तो मेरी तरफ से भी कुछ देना चाहिए ना। वो क्या देगा? ददामी बुद्धि योगम तम, आपको बुद्धि देगा, आप इसको बढ़ाना शुरू कर दोगे। तो ये बढ़ रहा है कि नहीं? धन बढ़ रहा है कि नहीं? ये असली धन है। इसको ठीक तरह से कैलकुलेशन ये भी कभी करना सीखो कि इसमें टाइम कितना लगता है। 2 घंटे, 2 घंटे में 25,000 रुपया मान लो, इसको रुपया समझ लो, 2 घंटे में 25,000 रुपया रोज की इनकम। आप रोज का कितना भगवान करे इससे ज्यादा कमाओ, लेकिन 8-10 घंटे में कितना रोज का कमाते हैं? 1,00,000 रुपया, इससे ज्यादा भी कोई कमाता है, भाग्यशाली हो। लेकिन हम ऐसे तो हमारे ये तो बिजनेस, अगर 8 घंटे आपकी तरह हम काम करें तो हमारा कितना हो जाएगा, ये भी गिनो ना। कितना हो जाए? 64 माला कितना हो गया? 1 लाख रोज का था, 1 लाख रोज का एक लाख अब मैं सिर्फ क्योंकि आप सबको सिर्फ गिनना ही आता है कि ये प्लेट इतने का ये प्लेट इतने का है, इसलिए मैं आपको गिनती सिखा रहा हूं कि ये गिनती भी कब करके देखो कि ऐसे भगवान का नाम लेना ये हमारा असली धन है जो कभी नाश नहीं होगा। रोज काम पे जाते हो कि कभी कभार जाते हो? हाँ रोज जाते हैं ना, तो रोज ये भी काम करना चाहिए ना, कभी कभार वाला काम नहीं है। कच्चा अचानक कभी सत्संग आज रखा है तो चलते हैं, सूर्य कॉम्प्लेक्स जाते नहीं, रोज होना चाहिए। इतने से नियम से दुकान रोज खोलना है, आपका जैसे दुकान रोज खुलता है ऐसे हमारा ये दुकान रोज खुलता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने इस प्रचार को बोला हरि नाम हट है, भगवान के नाम का ये हट है, दुकान है। और दुकान में भगवान के नाम का ये दुकान है और इसकी भी गिनती ऐसे ही चलती है और इसका हिसाब कभी करके देखो कि कितना इसमें लाभ होगा। वो जो आप कमाता है उसमें खर्चा होता है ना, तो कमाओ भले लाख उसमें खर्चा भी होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसमें इसको अव्यय बोलते हैं। अव्यय का मतलब व्यय कहते हैं खर्चे में, अव्यय का मतलब इसमें से कभी माइनस तो होना ही नहीं, केवल प्लस होगा, माइनस होगा ही नहीं। आप चलो एक लाख कमाओ फिर भी 25,000 तो खर्चा महीने का करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा घर का, फिर टैक्स वालों से चोरी करनी, कुछ भी करना पड़े, लेकिन पैसा कहीं से लेने, खतरा तो है ना कहीं जाने का, यह खतरा है ही नहीं इसमें, तो कहीं से खतरा नहीं। किसी ने कहा कि आपका कोई और जप करेगा क्या? आपके पैसा तो कोई चुरा सकता है लेकिन आपका कोई और जप कर सकता है क्या? हाँ भाई यहां 50,000 कोई आपका ले जा सकता है, लेकिन ये कहता हूं मैं आप 16 माला मेरी कर लो करोगे क्या? तो इसको तो कोई ले जाने के लिए भी तैयार, ये तो ऐसा है कोई इसको लेने के लिए भी तैयार नहीं, इसमें रिस्क पैसे का भी नहीं। हाँ माला झोली लगी ना तो घर तक ले जाएगा, मेरे को नहीं झपनी पड़े। अब पर्स दे जाने दे, ये तो दे के ही जाएगा। तो ये ऐसे धन को क्यों नहीं रखें जिसको कोई हाथ ही नहीं लगाए और आपका बढ़ता ही रहे, तो इसका तो कोई नहीं ले सकता है आपसे। कभी कभी तो हम इसको हमारा क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं इसको, आपका क्रेडिट कार्ड बैंक में चलता है, हमारा क्रेडिट कार्ड सब जगह चलता है, सब देशों में सब लोगों के बीच में चल सकता है, और फिर इस लोग के बाहर जाएंगे तो वहां भी ये क्रेडिट कार्ड हमारा चलेगा ही। तो ये ऐसा क्रेडिट कार्ड है वो देश विदेश में नहीं लेकिन वो स्वर्ग लोक से सत्य लोग गौलोक तक सब जगह चल सकता है। तो ऐसा काम क्यों नहीं करना चाहिए बुद्धिमानी से, जो नित्य हो, जो सत्य हो। जो हम कर रहे हैं वो न नित्य है न सत्य है, न वो आनंद देने वाला है, सिर्फ आंखों का, हम कहते हैं आंखों का झो है, आंख हमारी बड़ी तृप्त हो गई, हमने सब देखा, लेकिन दिल तो खाली पड़ा है। इसमें दिल हृदय आनंद से प्रफुल्लित हो जाता है, कभी आप जप करके देखो आपके हृदय के अंदर, फिर आनंद का अनुभव भी करके देखो। कभी भक्तों के संग में बैठ के भगवान का नाम जप के देखो और उस आनंद को कंपेयर करके देखो कि इसके बराबर कोई आनंद है नहीं दूसरा। लेकिन इस आनंद के अनुभव करने के लिए भक्तों के संग में अभ्यास करना पड़ेगा और सत शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। ये दो चीजें कमी हमारे पास हो गई है, इसको ठीक तरह समझो। ये हम अभी न सावधान हुए तो भविष्य में बहुत बड़ी समस्याएं, हमको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हरे कृष्णा, बच्चे लोग आप भजन गाओगे ना, गा के सुनाओ सबको, देखें क्या कहते हैं आप। बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा। जी 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 जी, जी।